ईसा तकरीबन 30 साल का था जब उसने खिदमत शुरू की। जब याहिया को जेल में डाल दिया गया तो ईसा गलील के इलाके में आया और अल्लाह की खुशखबरी का ऐलान करने लगा। वो बोला, मुकर्रा वक्त आ गया है, अल्लाह की बादशाही करीब आ गई है, तौबा करो और अल्लाह की खुशखबरी पर ईमान लाओ। एक दिन जब ईसा गलील की झील के किनारे किनारे चल रहा था तो उसने शमाउन और उसके भाई इंद्रियास को देखा। वो झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वो माहीगीर थे। उसने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। ये सुनते ही वो अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थोड़ा सा आगे जाकर ईसा ने जब्दी के बेटों याकूब और यहुन्ना को देखा। वो किश्ती में बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें फौरन बुलाया तो वो अपने बाप को मजदूरों समेत कश्ती में छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो कुफरनहूम शहर में दाखिल हुए और सबत के दिन ईसा इबादत खाने में जाकर लोगों को सिखाने लगा। वो उसकी तालीम सुनकर हक्का बक्का रह गए क्योंकि वो उन्हें शरीयत के आलमों की तरह नहीं बल्कि इख्तियार के साथ सिखाता था। उनके इबादत खाने में एक आदमी था जो किसी नापाक रूह के कब्जे में था। ईसा को देखते ही वो चीख चीख कर बोलने लगा, ए नासरत के ईसा, हमारा आपके साथ क्या वास्ता है? क्या आप हमें हलाक करने आए हैं? मैं तो जानता हूँ आप कौन हैं, आप अल्लाह के कद्दूस हैं। ईसा ने उसे डांट कर कहा, खामोश, आदमी में से निकल जा। इस पर बदरू आदमी को झंझोड़ कर और चीखें मार मार कर उसमें से निकल गई। तमाम लोग घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या है, एक नई तालीम जो इख्तियार के साथ दी जा रही है, और वो बदरूहों को हुक्म देता है तो वो उसकी मानती हैं। और ईसा के बारे में चर्चा जल्दी से गलील के पूरे इलाके में फैल गया। इबादत खाने से निकलने के ऐन बाद वो याकूब और यहुन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर गए। वहाँ शमाउन की सास बिस्तर पर पड़ी थी क्योंकि उसे बुखार था। उन्होंने ईसा को बता दिया तो वो उसके नज़दीक गया, उसका हाथ पकड़कर उसने उठने में उसकी मदद की। इस पर बुखार उतर गया और वो उनकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई और सूरज ग़ुरूब हुआ तो लोग तमाम मरीजों और बदरू गिरफ्तार खास को ईसा के पास लाए। पूरा शहर दरवाजे पर जमा हो गया और ईसा ने बहुत से मरीजों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से शिफा दी। उसने बहुत सी बदरूहें भी निकाल दी लेकिन उसने उन्हें बोलने ना दिया क्योंकि वो जानती थीं कि वो कौन है। अगले दिन सुबह सवेरे जब अभी अंधेरा ही था तो ईसा उठकर दुआ करने के लिए किसी वीरान जगह चला गया। बाद में शमाउन और उसके साथी उसे ढूंढने लगे। जब मालूम हुआ कि वो कहाँ है तो उन्होंने उससे कहा, तमाम लोग आपको तलाश कर रहे हैं। लेकिन ईसा ने जवाब दिया, आओ हम साथ वाली आबादियों में जाएं ताकि मैं वहाँ भी मनादी करूँ, क्योंकि मैं इसी मकसद से निकल आया हूँ। चुनांचे वो पूरे गलील में से गुजरता हुआ इबादत खानों में मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। एक आदमी ईसा के पास आया जो कोढ़ का मरीज था। घुटनों के बल झुककर उसने मिन्नत की, अगर आप चाहें तो मुझे पाक साफ कर सकते हैं। ईसा को तरस आया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं पाक साफ हो जा। इस पर बीमारी फौरन दूर हो गई और वो पाक साफ हो गया। ईसा ने उसे फौरन रुखसत करके सख्ती से समझाया, खबरदार ये बात किसी को ना बताना, बल्कि बैतुल मुकद्दस में अमाम के पास जा ताकि वो तेरा मुआयना करे। अपने साथ वो कुर्बानी ले जा जिसका तकाजा मूसा की शरीयत उनसे करती है, जिन्हें कोढ़ से शिफा मिली हो। यूं एलानिया तस्दीक हो जाएगी कि तू वाकई पाक साफ हो गया है। आदमी चला गया लेकिन वो हर जगह अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने ये खबर इतनी फैलाई कि ईसा खुले तौर पर किसी भी शहर में दाखिल ना हो सका बल्कि उसे वीरान जगहों में रहना पड़ा। लेकिन वहाँ भी लोग हर जगह से निकलकर उसके पास पहुँच गए। कुछ दिनों के बाद ईसा कफरनहूम में वापस आया। जल्द ही खबर फैल गई कि वो घर में है। इस पर इतने लोग जमा हो गए कि पूरा घर भर गया, बल्कि दरवाजे के सामने भी जगह ना रही। वो उन्हें कलाम मुकद्दस सुनाने लगा। इतने में कुछ लोग पहुंचे, उनमें से चार आदमी एक मफलूज को उठाए ईसा के पास लाना चाहते थे, मगर वो उसे हजूम की वजह से ईसा तक ना पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने छत खोल दी। ईसा के ऊपर का हिस्सा उधेड़ कर उन्होंने चारपाई को, जिस पर मफलूज लेटा था, उतार दिया। जब ईसा ने उनका ईमान देखा तो उसने मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। शरीयत के कुछ आलिम वहां बैठे थे, वो ये सुनकर सोच विचार में पड़ गए। ये किस तरह ऐसी बातें कर सकता है? कुफर बक रहा है, सिर्फ अल्लाह ही गुनाह माफ कर सकता है। ईसा ने अपने रूह में फौरन जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने उनसे पूछा, तुम दिल में इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मफलूद से ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, या ये कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन मैं तुमको दिखाता हूं कि इब्ने आदम को वाकई दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये कहकर वो मफलूद से मुखातिब हुआ, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा। वो आदमी खड़ा हुआ और फौरन अपनी चारपाई उठाकर उनके देखते देखते चला गया। सब सख्त हैरत ज़दा हुए और अल्लाह की तमजीद करके कहने लगे, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा। फिर ईसा निकलकर दोबारा झील के किनारे गया। एक बड़ी भीड़ उसके पास आई तो वो उन्हें सिखाने लगा। चलते चलते उसने हल्फई के बेटे लावी को देखा, जो टैक्स लेने के लिए अपनी चौकी पर बैठा था। ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और लावी उठकर उसके पीछे हो लिया। बाद में ईसा लावी के घर में खाना खा रहा था। उसके साथ ना सिर्फ उसके शागिर्द बल्कि बहुत से टैक्स लेने वाले और गुनाहगार भी थे, क्योंकि उनमें से बथेरे उसके पैरोकार बन चुके थे। शरीयत के कुछ फरीसी आलमों ने उसे यूं टैक्स लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से पूछा, ये टैक्स लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर ईसा ने जवाब दिया, सेहतमंदों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि मरीजों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। किसी और वक्त जब ईसा इबादत खाने में गया तो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। सबत का दिन था और लोग बड़े गौर से देख रहे थे कि क्या ईसा इस आदमी को आज भी शिफा देगा, क्योंकि वो उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई बहाना तलाश कर रहे थे। ईसा ने सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, उठ, दरमियान में खड़ा हो। फिर ईसा ने उनसे पूछा, मुझे बताओ, शरीयत हमें सबत के दिन क्या करने की इजाज़त देती है, नेक काम करने की या गलत काम करने की, किसी की जान बचाने की या उसे तबाह करने की? सब खामोश रहे। वो गुस्से से अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ देखने लगा। उनकी सख्त दिली उसके लिए बड़े दुख का बायस बन रही थी। फिर उसने आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने ऐसा किया तो उसका हाथ बहाल हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर सीधे हेरोदीस की पार्टी के अफराद के साथ मिलकर ईसा को कत्ल करने की साजिशें करने लगे। लेकिन ईसा वहां से हटकर अपने शागिर्दों के साथ झील के पास गया। एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया। लोग ना सिर्फ गलील के इलाके से आए बल्कि बहुत सी और जगहों, यानी यहूदिया, यरूशलम, अदूमिया, दरियाई यर्दन के पार और सूर और सैदा के इलाके से भी। वजह यह थी कि ईसा के काम की खबर उन इलाकों तक भी पहुंच चुकी थी और नतीजे में बहुत से लोग वहां से भी आए। ईसा ने शागिर्दों से कहा, एहतियातन एक किश्ती उस वक्त के लिए तैयार कर रखो जब हजूम मुझे हद से ज्यादा दबाने लगेगा, क्योंकि उस दिन उसने बहुतों को शिफा दी थी, इसलिए जिसे भी कोई तकलीफ थी वो धक्के दे देकर उसके पास आया ताकि उसे छू सके। और जब भी नापाक रूहों ने ईसा को देखा तो वो उसके सामने गिरकर चीखें मारने लगीं। آپ اللہ کے فرزند ہیں۔ لیکن عیسیٰ نے انہیں سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ وہ اسے ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد عیسیٰ نے پہاڑ پر چڑھ کر جنہیں وہ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس کے پاس آئے۔ اس نے ان میں سے 12 کو چن لیا، انہیں اس نے اپنے رسول مقرر کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چلیں اور وہ انہیں منادی کرنے کے لیے بھیج سکے۔ اس نے انہیں بدروحیں نکالنے کا اختیار بھی دیا۔